जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी प्रिय द सोल हरी हरि बोल हरी हरि बोल श्री सरिये व्यस्त और आत्मा सरिये परिणाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ जय श्री कृष्णा न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरी हरी बोल एवरीवन हरी हरी बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवत गीता का कोर्स भी हम आरंभ कर चुके हैं जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। सबसे बड़ी बात है घर बैठे बैठे हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तैयार होने की जरूरत नहीं है। ऐसी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि हम भगवत गीता कल हमारी स्टार्ट हो चुकी है तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्णा का आह्वान करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को ठीक से समझ सकें और अपने जीवन में भी अपना सकें, है ना। तो कल हमने चैप्टर 1 अध्याय 1 शोकग्रस्त अर्जुन के 2 वर्सेस कर लिए थे। थोड़ा समराइज कर लेते हैं आज उसको। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने संजय को कहा था। धृतराष्ट्र कुरुवंश के वंशज थे और संजय उनका मंत्री था। जब युद्ध डिसाइड हो गया दोनों पक्षों से पांडवों और कौरवों की तरफ से, है ना, तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे तो मैं ऋषि वेदव्यास जी जिनका धृतराष्ट्र के साथ लगाव था तो उन्होंने उनके मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है सारी घटनाओं को वो विस्तार से संजय के माध्यम से सुन सके समझ सके। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि युद्ध में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें धृतराष्ट्र के मन के भाव दिखते हैं, है ना। देखो जैसे कि आपको पता है कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, वे राज्य के कार्यों का संचालन नहीं कर सकते थे, है ना, इसलिए सबकी रजामंदी से उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया था जिसके कारण वो हमेशा ही नाराज रहते थे, उनको ये बात कभी भी पसंद नहीं थी और फिर पांडु की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और धृतराष्ट्र राजा बनते हैं। तो उनका अपने पुत्रों से दुर्योधन से अत्यधिक मोह अत्यधिक आसक्ति थी इसलिए उन्होंने पांडु के पुत्रों को कभी भी प्रेम नहीं किया उनके साथ कभी भी न्याय नहीं किया, है ना। और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह एक्सेसिव अटैचमेंट्स अपने पुत्रों के लिए होना अपने राज्य के लिए होना उनके चरित्र की विशेषता थी। धृतराष्ट्र मैं मेरे बच्चे मेरा राज्य मैं ही कंट्रोलर हूँ मैं एंजॉयर हूँ इस फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान धृतराष्ट्र के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं इसलिए पहला श्लोक पहला और लास्ट श्लोक है धृतराष्ट्र से जो बुलवाया गया। एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है पूरी भगवद गीता में और पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र से बुलवाया गया। और दूसरा पॉइंट था श्लोक में कि धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र कुरुवंशियों की भूमि है फ्रेंड्स, ये केवल युद्ध भूमि ही नहीं तीर्थ भूमि भी है। तो इसलिए भी धृतराष्ट्र को टेंशन है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है ना, और धर्म पांडवों के साथ है तो जीत भी उनकी ही होगी। अंदर से तो उनको पता है ना कि धर्म किसके साथ है। तो इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र अंदर से डरे हुए हैं, घबराहट है उनको, बेचैनी हो रही है उनको कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा। श्लोक नंबर 2 में हमने समझा कि जब धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने पर कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, उसके जवाब में संजय ने कहा है ये श्लोक दूसरा। देखो फ्रेंड्स युद्ध में जब आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी, है ना, तो पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। सारी स्थिति का विवेचन करके वो सारी स्थिति को बताने अपने गुरु के पास जाता है। तो ये श्लोक दुर्योधन की अहंकारी सोच को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता कैसे वो बाहर से तो बड़ा स्ट्रांग होने का दिखावा करता है ना, उसको लगता था कि वो तो जीत जाएगा लेकिन जैसे ही उसने पांडवों के युद्ध की व्यवस्था देखी तो उसको डर लगा अंदर से, है ना, क्योंकि पांडव और पांडवों की सेना फ्रेंड्स बहुत शक्तिशाली लग रही थी। वैसे तो पांडवों की सेना कौरवों की सेना से बहुत छोटी थी, है ना, लेकिन सेना बहुत शक्तिशाली लग रही थी, पांडव बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। तो भावार्थ ये है कि उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे ना, और जहां भगवान हो, धर्म हो, राइटिसनेस हो, तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ता है ना। जिसका जीवन एथिकली जीतता है कोई फ्रेंड्स, है ना, राइटिसनेस के साथ जीतता है ना, धर्म के साथ जीतता है, भगवान के साथ मिलकर अपना जीवन जीतता है ना, तो उसका तो दूसरे पर प्रभाव पड़ना ही है। तो यही प्रभाव दुर्योधन पर पड़ा और वो कहीं ना कहीं अंदर से डर गया। तो वो बात करने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी, 10th श्लोक पढ़ना है हमने।
हरी हरी बोल। अध्याय 1 श्लोक नंबर 10। भीष्म पितामह के संरक्षण में रहते हुए हमारी सेना अति बलवान है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना का बल सीमित है। श्लोक नंबर 10। भीष्म पितामह के संरक्षण में रहते हुए हमारी सेना अति बलवान है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना का बल सीमित है। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक में दुर्योधन बात कर रहा है, वो कंपैरिजंस कर रहा है, वो सोचता है कि कौरवों की सेना तो अत्यंत अनुभवी पराक्रमी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा तो विशेष रूप से संरक्षित है, इसलिए उसकी सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, है ना, मतलब उसकी सेनाओं की शक्ति ज्यादा ताकतवर है, उसकी सेना अति बलवान है। और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि वो छोटी सेनाएं थी पांडवों की, है ना, और उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी भीम द्वारा की जा रही है। मतलब भीम की तुलना वो भीष्म से कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि भीष्म की तुलना में कुछ भी नहीं है, है ना। तो दुर्योधन को दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय तो निश्चित है, क्योंकि भीष्म बहुत ही पराक्रमी और अनुभवी सेनापति थे। अगर वो युद्ध में उनके साथ हैं कौरवों के साथ, तो उसको दृढ़ विश्वास था कि जीत तो उसकी ही होगी, है ना। तो इस श्लोक में फ्रेंड दुर्योधन नास्तिक सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है, नास्तिकता की मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कह रहा है एरोगेंस के साथ, देखो हमारे पास तो कितना कुछ है, है ना, हमारी सेना देखो कितनी बड़ी है, हमारे सेना के कितने बड़े योद्धा हमारे साथ हैं, और 100 पांडवों की सेना तो बहुत छोटी सी है, है ना। जैसे कि वर्ल्डी लाइफ में नहीं बात करता कि मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे तो मिनिस्टर्स भी जानते हैं, बैंक बैलेंस बहुत है मेरा। तो दुर्योधन कह रहा है कि उनके पास तो, दुर्योधन नास्तिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कह रहा है एरोगेंस के साथ कि देखो हमारे पास तो कितना कुछ है, है ना, और कह रहा है कि पांडवों के पास तो खाली भीम ही है और उनकी स्ट्रेंथ भी बड़ी लिमिटेड है, उनकी सेनाएं बहुत लिमिटेड है ना। तो दुर्योधन ने किसकी प्रेजेंस को इग्नोर किया, भगवान श्री कृष्ण की। जैसे नास्तिकता में एक इंसान भूल जाता है ना, इंसान के पास कितना भी कुछ क्यों ना हो मटेरियली, लेकिन अगर उसके पास भगवान नहीं होंगे तो उसको एक दिन हार का सामना करना ही पड़ेगा। अगर वो अनएथिकली अपना जीवन व्यतीत करता है तो एक ना एक दिन तो उसको हार का सामना करना ही पड़ेगा, है ना। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है फ्रेंड्स कि हमें कभी भी दुर्योधन की तरह नहीं बनना है ना। हाँ, अपनी फैमिली को चलाने के लिए हमें रिसोर्सेज का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें घमंड नहीं करना। अगर भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, तो हमें घमंड नहीं करना है, दूसरों को अपने सामने नीचे नहीं गिराना है ना। अगर भगवान ने दिया है तो भगवान छीन भी सकते हैं अगर हम घमंड में रहेंगे तो, है ना। तो जैसे दुर्योधन कर रहा है वैसे हमें नहीं करना है, और कभी भी दूसरों की शक्ति को फ्रेंड्स अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें। जीत तो उनकी ही होगी जहाँ पे भगवान स्वयं होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी। हरी बोल। 19 पढ़ना हमने।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 19। शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। श्लोक नंबर 19। शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल। हरी हरी। तो फ्रेंड्स देखो, वॉर होने से पहले शंख बजते थे, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब पांडव पक्ष के शंख बजे तो धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन और उसके भाई अंदर से डर गए। और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही कौरवों ने शंख बजाए तो पांडव डरे, हमें ऐसा कोई डर नहीं दिखाई दिया ना, ऐसा कुछ हमें भगवद गीता में बताया गया है ना। लेकिन स्पेशल ये मेंशन हुआ है कि जब पांडवों ने अपने शंख बजाए सबने अपने अलग अलग, तो दुर्योधन और उसके भाई अंदर से उनके हृदय विदीर्ण हो गए ना, और जब कौरवों ने शंख बजाए और पांडव डरे ये कहीं नहीं बताया हुआ है। तो इससे क्या समझना चाहिए हमें कि भगवान की शरण में थे पांडव, सच्चाई की तरफ थे ना पांडव, धर्म की तरफ थे पांडव। उनके पास चाहे बाहरी रिसोर्सेज कम थे, बाहरी चीजें कम थी कौरवों के कंपेरिजन में, लेकिन उनको अंदर से कोई डर नहीं लग रहा था, अंदर से कोई भय नहीं था उनको, है ना, क्योंकि निर्भयता, अभेदान, ये सब क्वालिटीज फ्रेंड्स उनको मिलती है जो भगवान की शरण में होते हैं, है ना। और भगवत गीता से निर्भयता मिलती है, अभेदान मिलता है जो भगवत गीता के टीचिंग्स को अच्छे से समझता है, पढ़ता है, है ना। और जो भगवान की शरण में ना हो, जैसे कि कौरव, वो बाहर से तो बहुत एरोगेंट एक्ट करेंगे, स्ट्रांगली एक्ट करेंगे, बाहर से एग्रेसिव बिहेवियर होता है उनका, लेकिन अंदर से वो डरे हुए होते हैं, क्योंकि अंदर से उनको पता होता है कि मैं गलत हूँ। अंदर से पता होता है हर व्यक्ति को कि वो गलत कर रहा है। और जो भक्त होते हैं, है ना, वो उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। जो भगवान के रास्ते में चलते हैं, ऐसे लोग बाहर से बहुत ज्यादा विनीत होते हैं, है ना, अगर जरूरत पड़े तो लड़ाई झगड़ा बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। लड़ाई बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में कहा कि अगर आप पांडवों को 5 गांव भी दे दोगे तब भी पांडव कंप्रोमाइज कर लेंगे, है ना। तो जो डिवाइन लोग होते हैं वो बाहर से बहुत ही विनीत होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रेंड्स। जैसे अंगद जब रावण के पास जाता है, पहले तो वो बड़े विनीत भाव से मैसेज देता है भगवान श्री राम का, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि ये तो मूर्ख लोग हैं, ये नहीं सुनने वाले, है ना, तो फिर वो क्या कहता है, मेरे पांव को पहले हिला कर दिखा दो, है ना। तो क्या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वहां कोई? हनुमान जी ले लो, बाहर से कितने स्ट्रॉन्ग, अंदर से बेहद कोमल, है ना। हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ आज तक, है ना, कितने स्ट्रॉन्ग थे वो बाहर से, उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, लेकिन अंदर से बेहद कोमल। उनको तो अपना शक्तियों का पता ही नहीं था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, है ना। तो भक्त लोग जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं वो बाहर से बहुत ही विनीत होते हैं और अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और मूर्ख लोग समाज के विनीत लोगों को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन होता उल्टा है। जो अहंकारी लोग होते हैं वो अंदर से बिल्कुल डरे हुए होते हैं। जब देखो वनवास में गए थे पांडव, और पीछे जो राज्य में दुर्योधन कौरव वगैरह लोग थे, तो वो ये सोच सोच कर परेशान रहते थे कि ये दोबारा ना आ जाएं और दोबारा से हमारा राजपाट हमारे हाथ से चला जाएगा। जब उन्होंने उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास दिया, तो उनको तो यही लगा कि ज्ञातवास में हम इनको ढूंढ ही लेंगे और एक कैसे रह पाएंगे जंगल में, वहीं पे उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना, और कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन अंदर से तो उनको डर लगा रहता था कहीं ये फिर से वापस ना आ जाएं और हमारा राजपाट इनके हाथ में चला गया तो क्या होगा, है ना। तो शंख बजने पर कहीं भी ये नहीं लगा कि पांडवों को डर लगा, जबकि उनकी सेना बहुत कम थी फ्रेंड्स, लेकिन उनके पास भगवान का साथ है, भगवान का आशीर्वाद है। तो अगर आपको भी किसी बात का डर लगता है या हमें किसी बात का डर लगता है, तो हमें समझना है कि कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छी है लेकिन दूसरों के लिए ठीक नहीं है। तो हमें झांकना है अपने जीवन में कि ऐसा क्या हम करते हैं, है ना, या कहीं हमारा भगवान के साथ कनेक्शन वीक तो नहीं हो गया है, है ना। भगवान के साथ कनेक्शन बनाने में अपना थोड़ा सा समय दो, है ना। तो अगर हम भी आप भी अपने डर से मुक्ति चाहते हो, हमें क्या सोचना है, कम से कम एक सेशन में भगवत गीता का लगा लो, कम से कम एक बार में भगवत गीता पढ़ लो। चाहे आप खुद से पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ो, उनके सत्संग ज्वाइन करो, है ना। आप खुद से भगवत गीता अगर आप पढ़ सकते हो तो भगवत गीता पढ़ने शुरू कर दो। 2-3 श्लोक आप पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला। आप सोच लो कम से कम 2-3 महीने मैंने सत्संग साधना सेवा सदाचार का जीवन जीना है, सिर्फ 2-3 महीने। कितने साल हम अपने मन गढ़ंत जीवन जीते हैं फ्रेंड्स, कितना कुछ करते रहते हैं हम अपने खुशी पाने के लिए, है ना। लेकिन सिर्फ इतना सोचो 2-3 महीने मैंने सत्संग साधना सेवा सदाचार का जीवन जीना है, है ना। भगवान को भोग लगा के खाना खाना है, माला जाप करनी है, एक माला करते हो उसको 4 माला पे ले आओ, 4 माला करते हो उसको 8 कर दो, 8 करते हो उसको 16 पे कर दो, सत्संग कभी कभी लगा रहे हो उसको रेगुलर कर दो, घर में एक टाइम आरती करो, व्रत रखो, भगवत गीता और अपने जो भी वेद वगैरह उपनिषद है उनको पढ़ना शुरू करो, है ना। बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिल सकती है फ्रेंड्स, जिनको आप बुक्स के द्वारा पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, है ना। टीवी पर फालतू प्रोग्राम देखने की जगह डिवोशनल प्रोग्राम देखना शुरू कर दो, 2-3 महीने करके देखो, तो सडनली जो आपको डर लग रहा है ना किसी बात का, जैसे कि हमें पास्ट फ्यूचर में फंसे रहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए वरीज करते रहते हैं, है ना, तो फिर क्या लगेगा कि कोई बात नहीं यार, मैं सरवाइव करगी, मेरा प्रभु ने इतना साथ दे दिया तो मेरे बच्चों को क्यों नहीं देंगे, मेरे बच्चे थोड़ी है, वो भगवान के बच्चे है ना, जैसे मैं भगवान की बच्ची हूँ तो मेरे बच्चे भी तो भगवान के बच्चे है ना, है ना, तो वो भी सेटल हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो डर लगना मतलब भगवान से जुड़ाव कम हो रहा है, हम अपने जीवन में कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, अपना मन घड़न जीवन जी रहे हैं, अगर हमारे मन में अगर कुछ डर है हमारे अंदर, तो बेटर है हम अपने जीवन में डिवोशनल प्रैक्टिसेस अगर हम बढ़ाएंगे, सत्संग साधना सेवा सदाचार का जीवन हमें जीना है, तो ये डर लगना भय लगना ये सब खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, जी पढ़ लो। हरी बोल।
हरी बोल। श्लोक नंबर 23। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। श्लोक नंबर 23। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो अर्जुन कह रहे हैं ये श्लोक, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि जो युद्ध के लिए जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं ना, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ, जो दुर्बुद्धि यानी कौरव दुर्योधन और उसके भाई, उनको मैं देखना चाहता हूँ, जो भी कौरवों का हित चाहने वाले लोग हैं, दुर्योधन का हित चाहने वाले लोग हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखने का बहुत डीप मीनिंग है, मतलब वो समझना चाहते हैं, अपनी स्थिति को समझना चाहते हैं कि मैं किसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। अर्जुन को देखो पता है ये कि है तो ये सब दुष्ट बुद्धि है ना, ये थोड़ी है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि ये लोग दुष्ट बुद्धि है, लेकिन फिर भी उन्हें मारने का अर्जुन का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, है ना, ये 23 वर्स हम कर रहे हैं ना, उससे पहले मैं थोड़ा सा लेके चलती हूँ आपको, 21-22 वर्स है ना, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि उसमें 21 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, ताकि वो जानना चाहते थे उन लोगों के बारे में जो युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, जिनसे उन्हें युद्ध करना है। तो अर्जुन जो ये प्रार्थना कर रहे हैं ना, उसको देखो ध्यान से सुनो, अर्जुन देखो जिनको देख रहे हैं ना अपने अगेंस्ट, मतलब कौरवों को, उनको अपनी सत्ता राज्य इनसे ऊपर का स्थान दे रहे हैं वो, है ना, मतलब उनके अंदर प्रेम का बीज है उनके लिए, है ना। और अगर ये बीज ना हो फ्रेंड्स हमारे अंदर भी, तो हमें कभी भी भगवत गीता समझ नहीं आने वाली है। अर्जुन अलग है, डिफरेंट है बाकी लोगों से, दुर्योधन जैसा नहीं है अर्जुन। एक तरफ दुर्योधन को क्या लगता है कि किस तरह मैं किसी भी प्रकार में हरा दूं इनको, दूसरी सेनाओं को जल्दी से, है ना, और यही सोच रहा है वो किसकी सेना बड़ी है, किसकी छोटी है, किसकी शक्तिशाली सेना लग रही है और किसकी शक्तिशाली नहीं लग रही है, वो इस सोच में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सेनाओं को कुछ नहीं गिन रहे हैं कि कितने इधर है कितने उधर है, दुर्योधन के मन में कुछ और ही चल रहा है, वो दोनों तरफ के लोगों को गिन रहा है, लेकिन अर्जुन को कोई मतलब नहीं है इन सब से। तो एक तरह का डिटैचमेंट वैराग्य है उनके मन में, एक तरह का उनका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, उनका भाव ही कहीं और दूसरी दिशा में है, उनको कुछ और जानना है, है ना। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। फ्रेंड्स ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा योद्धा होगा जो कहे कि मेरे को बीच में ले चलो, मैं दोनों या दोनों सेनाओं के बीच में जाना चाहता हूं। कोई कारण है ना कि भगवान कृष्ण निर्णय करते हैं, भगवद गीता जैसा संदेश, भगवत गीता जैसा उपदेश अर्जुन को देने के लिए, ना ये कोई सिंपल बात नहीं है। अब ये एक भूमिका बना रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण ही बना रहे हैं भूमिका, कि अर्जुन के मन में वैराग्य डाल रहे हैं, मोह डाल रहे हैं, लेकिन मोह अपने लिए नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरी फैमिली का होगा क्या होगा। मोह है तो अपने स्वजनों की प्राण रक्षा का, कि उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। तो अर्जुन को वो कहीं ना कहीं वो इस लायक समझते हैं कि भगवत गीता का पात्र बने, भगवत गीता का सुपात्र पाया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण तो भगवान है ना, उनको तो पता है किसके मन में क्या चल रहा है। हम बाहर से कितने भी अच्छा बनने का पखंड कर लें या ढोंग कर लें, लेकिन अंदर से तो भगवान को पता है कि हम कैसे हैं अंदर से। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अंदर से जानते हैं, साफ साफ देख रहे हैं वो अर्जुन की इन सारी फीलिंग्स को, इन सारे भावों को, बड़े समय से वो जानते हैं अर्जुन को, आज थोड़ी जानते हैं, वो तो बचपन से ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, उनका मित्र था, है ना। और वो कौरव पक्ष की भाव भी जान रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, तो वो कौरव पक्ष की हलचल भी देख रहे हैं और अर्जुन की मन की हलचल भी देख रहे हैं, उसके भाव भी देख रहे हैं, है ना। अर्जुन को सब पता है, कि ये सब दुष्ट बुद्धि है ना, कोई नई बात थोड़ी है, उसको बचपन से पता है। जो भी कॉन्स्पिरेसी वो लोग करते थे तो उनको सब पता है ना, पांडवों को सब पता था। लेकिन अर्जुन का फिर भी उनको मारने का मन नहीं है, क्योंकि उनमें दिव्य गुण है फ्रेंड्स, डिवाइन क्वालिटीज है, क्षमा, उदारता, प्रेम भाव, कोमलता। और यह पहली बार नहीं हुआ कि पहले भी अर्जुन ने कौरवों को क्षमादान दिया था। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर बदले की भावना ना हो। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे भी ऐसा ही करना है। जब हमारे अंदर, आपके अंदर बदले से ऊपर कुछ हो, तो यही बात भगवान कृष्णा को, भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगी है ना। और एक आम व्यक्ति के लिए तो ये सब चीजें बहुत बड़ी बात होती है ना। आम आदमी के लिए तो ये सत्ता, ये सुख, ये अपना राज्य, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, बदला लेने की भावना, ये सब बहुत बड़ी बातें होती हैं आम आदमी के लिए। इसी के लिए जीतता है, कई कई साल, कई कई लाइफ का अपना इतना बड़ा स्पैन वो इसमें खर्च कर देता है ना। और अर्जुन में भगवान को इससे ऊपर दिखता है ना, डिवाइन क्वालिटीज दिखती हैं, आम आदमी से ऊपर दिखता है अर्जुन है ना। उनको एक आशा बंधी होगी उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को कि एक्चुअली ये भगवत गीता की कृपा अर्जुन पे हो सकती है और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों पे गीता बरस सकती है ना। क्योंकि आम आदमी के मन से अर्जुन का मन बहुत अलग है फ्रेंड्स, है ना। तो भगवान कहीं ना कहीं वो दिव्य गुण अर्जुन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्जुन को, बहुत टाइम से देख रहे हैं एक्चुअली वो, कि किसी तरह से वो क्वालिटीज इस तरह से बाहर आए, है ना। उन्होंने एक सीन क्रिएट किया ताकि अर्जुन विचलित हो जाए अपने स्वजनों को देखकर और भगवत गीता उनको सुनाई जा सके और अर्जुन के माध्यम से हमें सुनाई जा सके, है ना। और फ्रेंड देखो, एक बार इसमें और बहुत समझने वाली है कि अर्जुन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई, है ना। क्योंकि भगवान की संगत का असर था उसको, क्योंकि वो शुरू से ही भगवान को बड़ी प्रेफरेंस देता था, उनकी हर बात मानता था, उनकी हर गाइडेंस में भगवान श्री कृष्ण होते थे, है ना। और देखो हम लोगों में और अर्जुन में देखो एक ही डिफरेंस है कि हम लोग, हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है लाइफ में, हम अंधेरे की तरफ बढ़ी जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं जाना कहाँ है। लेकिन अर्जुन ने भगवान की संगत की, है ना, भगवान पे विश्वास किया और वो इस अंधेरे से, अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाया, है ना। अगर हम देखो ध्यान से देखें ना, बहुत डीपली ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे कि पूरा युद्ध, अब गीता नहीं होती तो इस युद्ध को कौन याद रखता फ्रेंड्स, आप सोचो थोड़ा, है ना। और ये पूरा युद्ध जो है ना एक तैयारी है, क्योंकि भगवत गीता को घटना था अर्जुन के जीवन में और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के जीवन में, इसलिए इतनी तैयारी हुई महाभारत के युद्ध की, इतनी तैयारी हुई, है ना। अगर इतनी तैयारी नहीं होती तो अर्जुन का मन कैसे विचलित होता, जैसा अभी हुआ, है ना, होता। भगवत गीता तो पहले क्यों नहीं सुनाई भगवान ने अर्जुन को, तो वो बहुत सालों से जानते थे, है ना। उससे 2 साल पहले क्यों नहीं सुनाई, उससे 10 साल पहले क्यों नहीं सुनाई, वही टाइम क्यों भगवान ने चूज किया, क्यों? क्योंकि अर्जुन का मन विचलित होना था, उसके मन के भाव बाहर आने थे। और फ्रेंड्स, जो अर्जुन इतना विचलित हो रहा है ना, तो इसलिए नहीं कि वो डर रहा है, डर के नहीं, वो दोनों सेनाओं के मध्य गया था। अर्जुन तो 100% विश्वास है उसको कि अगर युद्ध हुआ तो जीत तो उसकी ही होगी, पांडवों की ही जीत होने वाली है। लेकिन उसको डर क्या है, डर है कि मैं इनको मारूं कैसे। वो एक बार भी नहीं कहते कि मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ क्या होगा, ऐसा कोई डर नहीं है अर्जुन। अर्जुन को पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, है ना। तो ये अर्जुन वीर है अंदर, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग है शारीरिक रूप से, लेकिन अंदर से बहुत कोमल, महान बल है अर्जुन। चाहे तो वो 1 मिनट में सब खत्म कर दे, लेकिन भाव में बह रहे हैं अर्जुन, है ना। देखो जब भगवत गीता बताई गई तो दुर्योधन भी तो वही था ना, तो दुर्योधन को सुना देते तो सारी लड़ाई का जड़ी खत्म हो जाती, युद्ध ही नहीं होता ये, है ना। अगर भगवत गीता दुर्योधन को सुनाई जाती तो शायद ये युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन को गीता में, भगवान श्री कृष्ण में कोई मतलब नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट इनिशिएटिव तो उसको ही लेना था ना। भगवान तो सामने थे, ऐसे भगवान तो हैं, लेकिन चॉइस तो हमने लेनी है ना, कि हमें भगवान के रास्ते में चलना है कि अपने मनगढ़ंत जीवन जीना है, हमें भगवत गीता सुननी है कि हमें फिर वही अपनी दुनियादारी के जीवन में रहना है। भगवान तो अभी भी सामने ही है, अगर दुर्योधन जाता तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते, उसको भी सुनाते, है ना। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है कि अपने स्वजनों को दंड देकर मुझे क्या मिल जाएगा, उसके ये भाव है ना। जिसको भगवान से कोई नाता नहीं है, जिसको एथिकली अपना जीवन नहीं जीना है, उसके लिए भगवत गीता का कोई मीनिंग नहीं है फ्रेंड्स, कोई मतलब नहीं है उसके लिए। जिसके लिए धन, अपना जीवन, अपना फैमिली, अपना सत्ता, है ना, अपना स्वार्थ, यही सब कुछ है, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है भगवत गीता, उनके लिए नहीं है फ्रेंड्स। युद्ध में कोई भी अर्जुन को जीत नहीं सकता था फ्रेंड, जितना शक्तिशाली था अर्जुन, इतना महान बली था अर्जुन, लेकिन अभी क्या हो गया, वो प्रेम में हार गया। तो ऐसे लोगों के लिए होती है भगवद गीता। अर्जुन को कोई जीत सकता था, चाहे करण हो, गुरु द्रोणाचार्य जी हो, भीष्म पितामह हो, अश्वत्थामा हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, अर्जुन को कोई भी नहीं जीत सकता था, है ना। और उनका क्या हुआ, आपने देखी होगी महाभारत, है ना। तो जिस अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता फ्रेंड्स, वो अपनी भावनाओं के आगे कमजोर बना हुआ है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपने ही हाथों हारा हुआ है ना। और उसको एक्चुअली राइट गाइडेंस चाहिए थी, है ना, डिवाइन क्वालिटीज थी उसमें, लेकिन उसे प्रकाश चाहिए था, उसे ज्ञान चाहिए था। देखो फ्रेंड्स, कौन हाथ आया राजा जाने देता है ना, कौन हाथ आया पैसा जाने देता है कोई ऐसा, है ना। कौन अपने दुश्मनों के लिए फूट फूट कर रोता है कोई, है ना। कौन मारने की अपेक्षा खुद ही मर जाने का चयन करता है ना। कौन अपने शत्रु को क्षमा दान दे देता है ना। तो फ्रेंड्स, भगवद गीता कोई सिंपल बुक नहीं है कि आप उठाओगे और उसको पढ़ लोगे। इसलिए आपने देखे होंगे आसपास के लोग, हाँ मैंने पढ़ी है, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ी है, लेकिन आप उनके जीवन में कोई महक नहीं देख पाओगे, है ना। मतलब बहुत सिंपली वो बोल देते हैं कि हाँ मैंने दो बार पढ़ी है, तीन बार पढ़ी है ना। गीता को पढ़ा नहीं जाता फ्रेंड्स, गीता के लायक बनना होता है। हम सब भी तो कुरुक्षेत्र में ही है ना फ्रेंड्स, रण क्षेत्र में हम सब है। हम सब तो अपने अपने संघर्षों के साथ जीवन जीते हैं, है ना। होते हैं ना हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, कठिनाइयों के साथ हम जीवन हम निर्वाह करते हैं अपना। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स है लाइफ में, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुरुक्षेत्र में पैदा ना होते हो, रण क्षेत्र में पैदा ना होते हो, लेकिन सब अर्जुन नहीं है फ्रेंड्स। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो हम सब है, लेकिन जो एक अर्जुन है ना, उसके लिए ये है ये भगवद गीता। बाकियों के लिए के तो सिंपल बुक है, नॉर्मल बुक है ना। कितने लोग खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कितने लोग खड़े हैं। भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए कही भगवान ने, है ना। ठीक वैसे ही इस संसार में कितने लोग हैं फ्रेंड्स, लेकिन भगवद गीता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए, है ना। तो गीता को पढ़ा नहीं जाता फ्रेंड्स, गीता के लाइक बनना है हमें। जो भगवान हमें बता रहे हैं, हमें उन क्वालिटीज को अपने अंदर कल्टीवेट करना है, तब भगवद गीता का रियल मीनिंग हमें समझ आता है। हम कहते हैं ना, हम भगवान की शरण में है, भगवान के शरण में। भगवान के साथ रहना सिंपल बात नहीं है फ्रेंड्स, आसान नहीं है। भगवान के साथ का मतलब है, हम जो आज जहाँ पे है ना, अपने आप को देख लो, अगर आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट हुई है ना, तो आप ऐसा होना चाहिए कि इस रीडिंग के बाद आप अपने आप को पहचान ही ना पाओ। एक रीडिंग कंप्लीट हो जाए, भगवत गीता आपको समझ आ जाए, चाहे थोड़ी क्यों नहीं, 2%, 3%, 5% भी समझ आती है आपको, तो आज आप जहाँ पे हो ना, उससे दूसरा ही व्यक्ति बन जाना, है ना। भगवान के साथ रहने का मतलब है कि जो हम है ना, अपनी मतलब के उस टूटते जाना, फालतू जो चीजें अंदर घुसाई हुई हैं उनको बाहर निकालना, और जो भगवान ने बताई हुई चीजें उनको अंदर डालना, है ना। मतलब इतना विश्वास हो जाना चाहिए हमें भगवान के साथ रहकर, भगवद गीता पढ़ के, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, कि बस भगवान तो मेरे साथ ही, अभी भी भगवद गीता मैं बोल रही हूँ तो मेरे सामने तो बैठे, वही तो सुन रहे हैं, वही तो कह रहे हैं मुझे, है ना, वही तो मुझे बता रहे हैं भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, वही तो मुझे समझा रहे हैं। इतना विश्वास होना चाहिए कि वो तो मुझे हर वक्त देख रहे हैं, है ना। इतनी हमारे भगवान से क्लोजनेस होनी चाहिए, जिसमें हमें लगे कि बस उन्होंने हमें, हमारा हाथ ही नहीं पकड़ा है, हमें गोदी में उठा के रखा हुआ है, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरि बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरि बोल,
हरि बोल, हरी हरी बोल जी।
हाँ जी, हाँ जी, मामा बात कर लो, हरी बोल।
हाँ जी, हरी हरी बोल मोना जी, आपका किन शब्दों में आपका मैं धन्यवाद करूं कि सच में लाखों करोड़ों बार भी शायद हम आपका थैंक्स करें तो वो कम है, क्योंकि मेरी आपके साथ थर्ड रीडिंग है, लेकिन सच में आज मेरी आंखों में आंसू आ गए हुए हैं कि आज भी ऐसे लगता है कि अभी हमने कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखना है हमें। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सारे ग्रंथों का सार है, और श्री कृष्ण जी का गाया ये दिव्य गीत भगवद गीता है, और इसमें भगवद गीता में जो है वो परफेक्ट क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर आप मिलते हैं, जो आपने हमें कल बताया था। और मैं इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जब मैं सेशन करती थी आपसे, तो कई बार मैं जैसे ऐसे बैठे होना या कभी कोई काम भी कर रहे हो ना, तो मेरे अंदर बहुत से क्वेश्चन चलते थे, और नेक्स्ट डे ही मेरे को उन सब क्वेश्चन के आंसर मिलते थे। और इसमें जैसे धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम मोह में फंसे हुए थे और उन्होंने कभी भी इस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की और सच्चाई की तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सब कुछ उनके पास था लेकिन उनमें जो अहंकार का भाव था वो उन्हें कभी भी अच्छा इंसान नहीं बना सका। जो धृतराष्ट्र है वो हर आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हम लोग भी मोह माया के बोलते हैं ना मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं और जो भगवान की प्रेजेंस को उन्होंने कभी फील ही नहीं किया। जब जैसे हम लोगों को भी अपनी लाइफ में एक मेंटर की हमेशा ही गाइड की जरूरत है जो हमें भगवान की तरफ से आप मिले, इसी तरह से भगवान कृष्णा भी अर्जुन को उनकी लाइफ में एक गाइड के रूप में एक मेंटर के रूप में मिले जिन्होंने उन्हें भगवत गीता सुनाई। और जब अर्जुन अपने रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले जाते हैं ना तो वो देखते हैं कि यहाँ तो मेरे सारे भाई बंधु गुरुजन सब हैं, तो वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि मैं तो इनके साथ युद्ध कर ही नहीं सकता और वो मोह में फंस जाते हैं और युद्ध करने के लिए इनकार कर देते हैं। यहाँ पर अर्जुन जो है ना वो अपने कर्म और अपनी ड्यूटी को भूल गए हैं। और यहाँ पर हम भी जो है हम इंसान भी अर्जुन की तरह ही प्रॉब्लम में आते हैं क्योंकि हम भी हमेशा अपना फायदा नुकसान देखते हैं। दुर्योधन जो है वो अपने अहंकार के कारण भगवान की प्रेजेंस को फील नहीं करते और वो अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो पांडव हैं वो परमात्मा की प्रेजेंस को फील करते हैं, वो परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भगवान की शरण में होते हैं ना वो कभी भी किसी भी विपत्ति में नहीं आ सकते। जैसे युद्ध में जब युद्ध का शंख बजा तो कौरव के सेना जब थी वो डर गई, तो इसका ये मेरे को ये समझ आई कि जो लोग अधर्म में होते हैं वो हमेशा विचलित ही रहते हैं। जैसे जब भी हम कभी कोई गलत काम करते हैं ना तो हमारा जो मन होता है ना स्टेबल नहीं रहता, हम हमेशा विचलित रहते हैं क्योंकि अंदर से हर इंसान को पता होता है कि वो इस जगह गलत है, तो स्टेबिलिटी इसमें कभी नहीं आ सकती। और जो भगवान की शरण में रहते हैं वो कभी भी किसी भी बोलते हैं ना विपत्ति से नहीं डरते हैं। और जब भगवान अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले जाते हैं ताकि वो मोह से छूट जाए, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि अपनों को मार से मुझे कोई भलाई नहीं देती, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। तो इसमें ये है कि अभी तक अर्जुन जो है वो मोह में फंसा हुआ है और भगवान उसका ये मोह दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम ये नहीं देखते कि परमात्मा का क्या परमात्मा की इच्छा है, हम इच्छा नहीं देखते, हम अपने ही जो मन की अपनी बातें होती हैं उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। इस वक्त अर्जुन भी इसी स्थिति में है और भगवान कृष्णा कर रहे हैं। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स आपने शेयर की हम लोगों के साथ और पूरे सत्संग को ही अच्छे से रिवाइज कर दिया। थैंक यू सो मच। देखो सिंपल बात है, भगवान कितना सिंपल हमें चीजें बता रहे हैं कि भाई अपना दिमाग लगाना बंद करो। सिंपल मुझे तो ये समझ आता है भगवान कह रहे हैं ना, जो अपना दिमाग है ना तुम्हारा छोटा सा लिमिटेड बुद्धि उसको लगाना बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुन लो। और जब हम उनकी बात सुनते हैं ना, मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मतलब लाइफ ही कंफर्टेबल हो जाती है जो हमने खुद ही कॉम्प्लिकेटेड किया चीजों को, है ना। बहुत लाइफ सिंपल है, छोटी सी लाइफ है, सिंपल है, खुश रहो और खुश रहने दो, सिंपल है ना। तो मतलब सारे द्वंद, सारी भय, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं अगर भगवान को हम सेंटर पॉइंट पे लें कि भाई भगवान है, भगवान देख रहे हैं, भगवान की गाइडेंस है, मैं रहना है मुझे बस, और कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ भगवान को खुश करना, सिंपल एक बात है ना। थैंक यू सो मच मम्मा, ब्यूटीफुल लर्निंग्स। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है? फ्रेंड्स हरी बोल,
हरी हरी बोल मोना दी, एवरीवन थैंक यू सो मच मोना दी। आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन था, आप जो भी श्लोक करवा रहे हो हमें बहुत अच्छे से करवा भी रहे हो और हमें समझ भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, जितना आ रहा उतना मैं बताती हूँ। आज के सत्संग से मेरी ये लर्निंग बनी है कि हमें कभी भी प्रभु द्वारा दिए गए जो हमें वो फैसिलिटीज दी हुई है उन्होंने कि उसका घमंड नहीं करना है और दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि हमारे पास सब कुछ या बहुत कुछ है और किसी के पास ये सब नहीं है। हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे पास जो भी है वो हमारे प्रभु श्री हरि द्वारा ही दिया गया है। हमारा उस पर घमंड करना व्यर्थ है, हमें उस पर कोई घमंड नहीं करना है। जो प्रभु से कनेक्ट होते हैं वो ऊपर से बड़े काम और अंदर से बड़े स्ट्रांग होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में टेंस नहीं होते, बल्कि कामली हर सिचुएशन को फेस करते हैं। और जो प्रभु से कनेक्ट नहीं होते वो ऊपर से तो काफी स्ट्रांग लगते हैं, बट अंदर से वो काफी वीक होते हैं और डरे हुए होते हैं। इसलिए हमें भी अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के थ्रू प्रभु से कनेक्ट होना है और अंदर से स्ट्रांग बनना है। अगर हमें प्रभु के फेवरेट बनना है तो हमें हमारे अंदर से बदले की भावना को निकाल कर क्षमा भावना को लाना होगा, क्योंकि प्रभु श्री हरि को एक इंसान के अंदर ऐसी ही डिवाइन क्वालिटीज पसंद है। जिस प्रकार का विश्वास अर्जुन को श्री हरि पर था, उसी विश्वास से प्रसन्न होकर प्रभु ने भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को ही दिया, उन्होंने किसी और को नहीं दिया। इसी वजह से, क्योंकि अर्जुन पूरा विश्वास पूर्ण रूप से उन पे विश्वास कर। हमें भी खुद को ब्लेस्ड समझना है कि जो आज हम भी ये भागवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, और हमें भी प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है, खुद को पूरी डेडिकेशन से उनको सरेंडर करना है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग पूजा जी एज ऑलवेज। और आप कह रहे हो कि मुझे थोड़े थोड़े समझ आ रहा है, कितना अच्छे क्रक्स पॉइंट्स आपने निकाले कि हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। सिंपल बात है फ्रेंड्स, हमें अर्जुन बनने में फोकस करना है ना। भगवान का बेस्ट स्टूडेंट है अर्जुन, है ना। और हमें ये फोकस रखना है कि भगवान अर्जुन को कितना प्यार करते हैं, अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे हैं, तो हमें भी अर्जुन जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। अंदर से भी मतलब ये भाव होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है बैठे हैं ना परमात्मा, है ना। न रोने धोने बैठ जाओ, इतने निर्बल अपने आप को बना लो। हम लोग इतना वीक अपने आप को शो करते हैं कि निर्बल लोगों के लिए नहीं है भगवत गीता, जो स्ट्रांग होते हैं उनके लिए होती है भगवत गीता, उनको ही समझ आने वाली है ना। तो हमें बाहर से स्ट्रोंग, अंदर से दूसरों के लिए दया भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, डिवाइन क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब आ जाके फिर बात वही आ रही है कि मतलब हमारे अंदर अर्जुन वाली क्वालिटीज होनी चाहिए सबके लिए, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सबके लिए। जो बात मेरे बच्चे के लिए ठीक है तो दूसरे के बच्चे के लिए भी ठीक होनी चाहिए। थैंक यू पूजा जी, हरी हरी बोल। हाँ जी कुमार जी, आप बात कर सकते हो। हरी बोल,
हरी हरी बोल। नदी, आज का सत्संग भी बहुत ही डिवाइन था और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें पता लग रही हैं। तो आज के जो वर्सेज जो आपने कराए, तो उनसे जो मेरी लर्निंग बनती है वो इस तरह के जो वर्स 10 है, इस श्लोक में क्या कहते हैं कि दुर्योधन के जो गर्भ को दिखाया गया है, दुर्योधन के द्वारा वे आम लोगों की स्थिति को दर्शाता है ना। दुर्योधन को जैसे मान है कि भीष्म पिता मैं के बल पर, और यहाँ पर वह भीम के बल को कुछ भी नहीं समझता है ना। यहाँ पर उसने श्री हरि की उपस्थिति को भी नकारा है, उसे प्रभु की उपस्थिति का आभास ही नहीं है। जो वो गर्भ में रहता है और दूसरों जो गर्भ में रहता है वो दूसरों को अंडर एस्टिमेट करता है, बल्कि जो विनीत रहता है वो हरि कृपा से हर एक क्षेत्र में विजय भी रहता है। तो यहाँ पे हमें ये है कि हम जो प्रभु के अस्तित्व को, प्रभु के कृपा को से ओतप्रोत रहें कि हम उसकी महिमा को जान पाए। जो वर्ष नंबर 19 है उसमें भगवान की शरण में जो होता है ना, उसे किसी का भय नहीं होता। और जो भगवान की उपस्थिति के महत्व को नहीं जानते और अंदर से खोखले होने के कारण हमेशा वे भयभीत रहते हैं, जो भगवान पर आस्था रखते हैं उन पर प्रभु की सुरक्षा का कवच हमेशा ही बना रहता है, और वह हर परिस्थिति में नीत रहकर सफलता को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम किसी कर्म की सफलता पर संशय करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें प्रभु पर आस्था नहीं है, यानी कि हमें अपने आसपास प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की कृपा का हमेशा ही ज्ञान रहना चाहिए। वर्ष जो नंबर 23 है, यहाँ पर जो दुर्योधन के मन के गर्भ और दंभ को दर्शाया गया है, वहाँ अर्जुन के मन में अपने सगे संबंधियों के प्रति प्रेम और दया और आदर को दर्शाता है। यहाँ दुर्योधन के लिए सत्य सुख की प्राथमिकता है, वहाँ अर्जुन के लिए स्वजनों के प्रति दया और आदर का भाव है। यहाँ पर अर्जुन की दुविधा की स्थिति बताई गई है कि वह कैसे अपने प्रिय संबंधियों के सामने उनका विरोध करे। हालांकि जीत उसकी ही होगी ये तो उसे पता ही था, क्योंकि प्रभु के साथ और कृपा उसके साथ ही थी और फिर वो पराक्रमी भी था, निष्कर्ष यह है कि जब हम प्रभु की कृपा दया और उसकी उपस्थिति के एहसास को अपने आसपास अनुभव करेंगे तो हम जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे और शांति से रह पाएंगे और अपने जीवन को सफल भी बना पाएंगे। श्री हरि चरणों से जुड़कर हरि हरि बोल।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज कुमार जी, ब्यूटीफुली आपने पूरे सेशन को अच्छी तरह से समराइज कर दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने सभी सारे श्लोकों को एक्सप्लेन करना है, किसी की भी सबको बोल रही हूँ, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड आप उन लर्निंग को ले सकते हो कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हो, है ना, उन श्लोकों से रिलेटेड, तो एक थोड़ा सेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, क्योंकि भगवद गीता तो सुनी ली तो अब थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि सारे श्लोक एक्सप्लेन करने हैं, तो एक श्लोक भी अगर हम पकड़े और उससे रिलेटेड अपनी लर्निंग्स हम शेयर करें कि मेरी लाइफ में इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं या मैं कैसे इसको यूज कर सकती हूँ इन लर्निंग्स को, है ना। तो मैं सबको कह रही हूँ, है ना। हाँ जी, बाकी ब्यूटीफुल लर्निंग्स रहती हैं आपकी जी। थैंक यू हरि बोल,
फॉर योर गाइडेंस एज वेल।
हाँ जी, कोई और है जो अपने लर्निंग शेयर करना चाहता है? फ्रेंड्स हरि बोल।
हरी हरि बोल। आज का सत्संग मोना दी बहुत ही अच्छा था, बहुत डिवाइन। मेरी जो आज के सत्संग से लर्निंग बनी है वो ये है कि हमें किसी भी चीज का, चाहे वो मात्रा में हमारे पास बहुत अधिक है दूसरों से, तो उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज ही मैं कहूंगी कि मैंने ये एक कथा सुनी थी और उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि जो सिकंदर राजा था उसके बारे में तो सभी जानते हैं। तो वो क्या करता है, बहुत ही घमंडी भी हो गया था उसे, बहुत विश्वास था कि ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई प्रजा नहीं है जिसको वो हरा नहीं सकता, जिसपे जीत हासिल नहीं करना था, कि जीत उसके कदमों के नीचे है, लाइक वो जहां कदम रखेगा वहीं उसकी जीत है। तो वो बहुत राज्यों पे जीत हासिल करता करता दौड़ता चल रहा था, तो कुछ साधु उसे दिखते हैं और साधु उसे देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और वो खुश होके ना नाचने लगते हैं। तो वो साधुओं से पूछता है कि तुम लोग मुझे, ऋषि मुनियों के, कि तुम लोग मुझे देख के क्यों इतना प्रसन्न हो? वो कह रहे हैं हम इसलिए प्रसन्न है कि तुम्हें देख रहे हैं कि तुम वो राजा हो जो इसके लिए जीत हासिल करना नामुमकिन जैसी कोई बात ही नहीं है, वो पता है जहां सिकंदर है वहां जीत है ही है। तो वो कहते हैं हम सिर्फ तुमसे ये विनती करते हैं, सिकंदर से कहते हैं वो मुनि, कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे कपड़े फटे हुए हैं, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो तुम हमारे लिए ना एक छोटी सी सुई ले आना, जहां भी हम स्वर्ग नर्क जहां भी मिलें कि तुम हमें वो सुई दे देना, हम ताकि अपने कपड़े सिल लें वहां पे। तो सिकंदर हंसते हुए कहता है कि ये तो नामुमकिन है कि मरने के बाद तो हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते, तो ये तुम कैसी बात कर रहे हो? सिकंदर कह रहा है ये बात, कहते तुम इतने ज्ञानी हो, तुम्हें पता है कि मरने के उपरांत हम इस धरती से कुछ भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर तुम इतना घमंड क्यों? तुम ये सब कुछ दुरा, अपना व्यवहार, अपना घमंड, ये किस लिए अपने साथ रख के तुम क्यों इतना बुरा काम कर रहे हो? तो वही है कि हमें, कि उसे भी घमंड था कि मैं, मुझे कभी हार ही नहीं सकता हूं, लेकिन वो जीत किस काम की, जिसमें किसी की भलाई ना हो, किसी का अच्छा ना हो। तो हमें कभी भी, हमारे पास जितनी मर्जी ताकत हो, पावर हो, स्ट्रेंथ हो, किसी भी सेंस में, चाहे वो मनी है या हमारी क्वालिटीज हैं, किसी भी चीज को लेके हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि ये चीज हमारे में ज्यादा है तो हम इसके साथ किसी को भी हरा सकते हैं। तो हमें हमेशा जो है वो प्रभु के साथ, प्रभु को सरेंडर करना है अपने आप को, कुछ भी करें। और ऐसा करने से जब हम प्रभु को अपने हर कार्य में, छोटे से छोटे कार्य में भी जब हम प्रभु को अपने मन में रख के करते हैं, तो हमारे मन में डर जैसा जो है वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं होगा। मैं कल ही मीनू दीदी से बात कर रही थी, सच में कह रही हूँ, आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। पिछले दिनों हमारी फैमिली में बहुत सारी डेथ्स हुई, तो आना जाना लगा रहा और थोड़ा सा मेरा पूजा पाठ भी कम हुआ था, बहुत थके हुए होते थे, नहीं हो पाती थी माला, तो थोड़े डर वाले सपने और कुछ अजीब सी चीजें होने लग पड़ी। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? तो मुझे लगा कि मैंने शायद थोड़ी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कम की है, उस वजह से है। देन आई, मैंने अपनी फैमिली को साथ बैठ के, नो डाउट बेड पे बैठ के, हम सभी को मैंने कहा हमने बहुत दिनों से ये चीज नहीं की है, आज सभी बैठेंगे और कल से हम जब कर रहे हैं तो मेरे कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि प्रभु नाम हरि नाम हमेशा आपके मन में चलता रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप स्पेशल टाइम निकालो। सबको, भगवान को भी पता होता है कि सब बिजी हैं, लेकिन मन में जो है, मन से कोई बिजी नहीं होता है। दिस इज द टैग लाइन ऑफ आवर सत्संग ग्रुप, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री फ्रॉम सोल। तो ये जो है मेरी आज के सत्संग की लर्निंग्स भरी हैं, और ये वो सब कुछ सत्संग में आज मोना दी ने एक्सप्लेन किया जो एक्चुअली में 2-3 दिनों में मेरे साथ हुआ है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुली आपने भी पूरे सत्संग को अच्छे से समराइज कर दिया और बहुत ही अच्छी सुंदर सिकंदर वाली स्टोरी सुनाई हमें। तो एक्चुअली हमें क्या होता है ना, जब हम मटेरियली होते हैं तो हमें लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है ना, हमें अपने मैं का बहुत अभिमान बोलो, घमंड बोलो, है ना। तो हमें ये समझना है कि भाई हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना, ना फिजिकली, ना मेंटली, है ना, ना फाइनेंशली। हमेशा हमें ये सोचना है कि हमारे ऊपर एक व्यक्ति तो है ही है ना, जो मेरे से ज्यादा सुंदर है, मेरे से ज्यादा पैसे वाला है, मेरे से ज्यादा जिसका दिमाग है, है ना। हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमें लगता है कि पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, मैंने क्या क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, है ना। हम अपने जीवन में बाकियों की प्रेजेंस को इग्नोर कर देते हैं, भगवान की प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि जो किया मैंने ही किया, है ना। ऐसा नहीं होता ना फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये जर्नी है, 100 हो जाएंगे तो 200 की जर्नी, 300, 400 स्पिरिचुअलिटी का जीवन अगर जीना है तो ये 100 पे कुछ नहीं होता, है ना। और हमेशा ये सोचना है कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ। खाली हाथ आए हैं, खाली एक सुई भी नहीं लेके जा सकते हम, है ना। और दूसरा पॉइंट की जैसे मीनाक्षी ने कहा कि नाम जाप हमें करना चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है ना हमारी फ्रेंड्स, जब हम दुनियादारी में फंसे होते हैं, है ना, तो हम एक्चुअली हम वहां पे अटक तो जाते हैं वहां पे। ये थोड़ी हम जब चल रहे हैं तो हम अटकेंगे ही नहीं, अटकते हैं, लेकिन फिर भी रास्ता पता होगा तो हम वापस भी आ जाते हैं ना। हमें जल्दी पता चल जाता है यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल, मेरा स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में, नहीं कुछ तो गलती मैं कर रही हूँ, है ना। तो फिर अपने आप को पता चल जाता है मैं कहाँ पे गलत हूँ, क्या चीजें मैंने की है। नाम जाप करते हैं, भगवान को भोग लगाना तो होना ही चाहिए ना, कि भाई जो लाइफ का पार्ट होना चाहिए सारी चीजें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, है ना। चाहे हम रोज 8 माला या 16 माला का हमने टारगेट लिया, चलो हम नहीं भी कर पाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमें फिर से दोबारा से नियम बना के करना है कि मुझे 8 माला तो मुझे करनी ही करनी है ना। 8 माला करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो 16 माला पे आना है ना। तो इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, है ना, भगवद गीता पढ़ने की इम्पोर्टेंस है ना। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। आज भजन की टर्न रश्मि जी आपकी है, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना दी, हरी हरी बोल एवरीवन। आपने मुझे कृपया की मेरे ऊपर कि आपने मुझे भजन सेवा दी, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। मेरी और मेरी बेटी भजन गाती है, मेरे साथ रोज सत्संग सुनती है, तो उसने आपके लिए एक भजन लड्डू गोपाल जी के लिए लिखा है उसने, तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों इकट्ठे गाएंगे। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। मायसेल्फ आशना, और मैं बहुत मानती हूँ उनको, लड्डू गोपाल को, और उनको भी मानती हूँ, और उनसे ज्यादा मैं श्री जी को मानती हूँ। और मैंने एक भजन लिखा था तो मैं अपनी मम्मा के साथ सुनती थी और मुझे अच्छा लगता था सुनना, मेरी मतलब बहुत अच्छा लगता था। अब स्टडी के साथ ऐसी स्पिरिचुअल थिंग सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं अपनी मम्मा को ये सेवा मिली थी तो ऐसा लगा जैसे मुझे भी मिली है, तो मैं अपनी मदर के साथ मिलके आज गाऊंगी। तो
हरी हरी बोल।
मैया तेरे लाल ने माखन लुटिया, दस की करा नाले मेरे सिर तो दुपट्टा खींचया, दस की करा। मैया तेरे लाल ने माखन लुटिया, दस की करा नाले मेरे सिर तो दुपट्टा खींचया, दस की करा। दूध दही बेच के मैं बच्चियां नू पाल दी, दूध दही बेच के मैं बच्चियां नू पाल दी, बड़ा ही सतावे मैनू तेरा नंद लाल जी, बड़ा ही सतावे मैनू तेरा नंद लाल जी। दूध दही जय हो, दूध दहियों ने मेरा सारा लुटिया, दस की करा। मैया तेरे लाल ने माखन लुटिया, दस की करा नाले मेरे सिर तो दुपट्टा खींचया,
दस की करा घर जांदे आनू सस मेरी लड़दी घर जांदे आनू सस मेरी लड़दी ताने मार मार के करो मैनू कड़दी ताने मार मार के करो मैनू कड़दी नाले कहंदी जय हो नाले कहंदी शाम तेरा की लगदा दस की करा मैया तेरे लाल ने माखन लुटिया दस की करा नाले मेरे सिर तो दुपट्टा खिचया दस की करा बंसरी तेरी दिशा मां बड़ी मिठी तान में ऐदे विच अटक गई मेरी जिंद जान में ऐदे विच अटक गई मेरी जिंद जान में बंसरी बजा के जय हो बंसरी बजा के मेरा दिल लुटिया दस की करा हो मैया तेरे लाल ने माखन लुटिया दस की करा नाले मेरे सिर तो दुपट्टा खिचया दस की करा यमुना किनारे और चावे रोज रास जी यमुना किनारे और चावे रोज रास जी रूप ताल सखियां दा नचे साडे नाल जी रूप ताल सखियां दा नचे साडे नाल जी बांके बिहारी जय हो ओ बांके बिहारी ओ दा नाम रखिया दस की करा मैया तेरे लाल ने माखन लुटिया दस की करा नाले मेरे सिर तो दुपट्टा खिचया दस की करा मैया तेरे लाल ने माखन लुटिया ओ दस की करा
हरी हरी बोल
हरी हरी बोल हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा भजन गाया लक्ष्मी जी और आशना जी आपने, बहुत ही आनंद आया हमें। और आप गाते रहा करो आशना जी, बहुत ही मधुर आवाज है लक्ष्मी जी आपकी भी, ब्यूटीफुली बहुत ही सुंदर भजन गाया, बहुत ही आनंद आया। और आगे भी सेवा ले लिया करो, है ना, ग्रुप में लिख लिया करो जिसको सेवा चाहिए तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे
राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 बोल एवरीवन हरे हरे बोल। घर घर मंदिर घर घर मंदिर राधे कृष्णा एवरीवन।